नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया पर हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। हमले के बाद ये जहाज कल यमन तट से दूर लाल सागर में डूब गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सभी 13 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमन के अधिकारियों के साथ सक्रिय समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने यमन के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी थी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। ये नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इसी राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के कारण, पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद की कार्यवाही आज दिन में 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषित करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय, मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। ये आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत सहित भारत के शीर्ष खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।